सत्यवचन।
नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्यवचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। श्रोताओ, जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से फिलिप्पियों नामक पत्री का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आध्यात्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, हो गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान। भजन करो सब उसके, वो है सबसे अधिक महान, भजन करो सब उसके, वो है सबसे अधिक महान। गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, ओ गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान। अपना देकर हमको जीवन राह दिखाई, जीवन अपना देकर हमको जीवन राह दिखाई, शरण में उसने लेकर हमको पाप से मुक्ति दिलाई, शरण में उसने लेकर हमको पाप से मुक्ति दिलाई। यीशु राजा सबसे प्यारा हुआ है मेहरबान, यीशु राजा सबसे प्यारा हुआ है मेहरबान। गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, ओ गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान। उसकी भक्ति जीवन की है भलाई, उसकी महिमा उसकी भक्ति जीवन की है भलाई। शीश नवाना उसके चरण में कितना है सुखदाई, शीश नवाना उसके चरण में कितना है सुखदाई। यीशु राजा सबसे प्यारा हुआ है मेहरबान, ओ यीशु राजा सबसे प्यारा हुआ है मेहरबान। गाते जाओ मिलके प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलके प्यारे यीशु के गुणगान, ओ गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान। भजन करो सब उसके, वो है सबसे अधिक महान, भजन करो सब उसके, वो है सबसे अधिक महान। गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, ओ गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, ओ गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे विश्वास है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रहते हुए परिवार के साथ कुशल पूर्वक हैं। और फिर से आज परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और विशेष करके अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम इन दिनों बाइबल में से फिलिपियों की पत्री नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और इस अध्ययन में हमने पौलुस के द्वारा उन सारी बातों को सीखा है जो हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से इस अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं हमारे इस जीवन के लिए जिसे आपने हमें दान स्वरूप दिया है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम मनुष्य हैं, हम दुर्बल और कमजोर हैं। हमारे जीवन के अंदर में कुछ भी ऐसी अच्छाइयां और भली बातें नहीं है, इसके बावजूद भी आप हमसे प्रेम करते हैं, ये जीवन दान आपने दिया है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज जब हम आपके वचन में से अध्ययन करना चाहते हैं, मनन चिंतन करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, हमारी प्रार्थना है कि हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को आप अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए, ताकि हर एक जो आपके वचन को सुनता है अपने जीवन में आशीषों को प्राप्त कर सके। यदि कोई बीमार है, निराश है, चिंतित है, परेशान है, अपने पारिवारिक जीवन में उलझा हुआ है या किसी प्रकार के दबाव और तनाव में है, पिताजी आप उन्हें छुटकारा प्रदान करें, अपनी शांति प्रदान करें, ताकि हर एक जीवन इस बात को समझ सके कि आप सबसे प्रेम करते हैं, आप उनकी चिंता करते हैं। हाँ प्रभु, आज के इस दिन में आप हमारे साथ हो, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, आप मेरे साथ निकाल लीजिए फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय उसका 3 पद। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय उसके 3 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं जो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। ध्यान दीजिए, खतना वाले तो हम ही हैं। पौलुस के कहने का क्या अर्थ है? गलातियों की पत्री के अंत में पौलुस स्पष्ट करता है, जहां पर वह लिखता है 6 अध्याय उसके 15 पद में, क्योंकि न खतना रहित कुछ है परंतु नई सृष्टि है। जितने इस नियम पर चलेंगे उन पर और परमेश्वर के इसराइल पर शांति और दया होती रहे। पुराना खतना अब समाप्त हुआ है। परमेश्वर बाहरी दिखावे को नहीं देखता है। खतना वास्तव में मन का होता है। यह एक नया जन्म है, परमेश्वर के प्रति एक नया स्वभाव है। सच्चा खतना यही है, मसीह में अवस्थित होना। लिखा है शरीर पर भरोसा नहीं रखते। हमें अपने पुराने स्वभाव पर भरोसा नहीं रखना है, हम केवल मसीह में भरोसा रखते हैं। हम उद्धार के लिए अपने ऊपर भरोसा नहीं रखते और न ही हम पुराने स्वभाव में अपना मसीही जीवन जीते हैं। हमारा यह एक नया जीवन, हम में मसीह का अंतर्वास होना है। व्यवस्था के पक्षधर विश्वासी पौलुस के पीछे पीछे हर जगह पहुंच जाते थे। वे विश्वासियों से कहते थे, हम जानते हैं कि भाई पौलुस कहता है कि हमें देह पर भरोसा नहीं रखना है, अर्थात हमें प्रथाओं पर नहीं चलना है और न ही बलिदान चढ़ाने हैं। व्यवस्था हमारा उद्धार नहीं कर सकती, वह उचित ही कहता है, क्योंकि उसके पास है ही क्या कि वह गर्व करे। उसकी यहूदी पृष्ठभूमि भी हमारे जैसी नहीं है। वह यह सब इसलिए कहता है कि वह अज्ञानी है और व्यवस्था पालन में खरा नहीं उतरा है। यही कारण है कि उसे शारीरिक अभ्यासों पर भरोसा नहीं है। अब पौलुस उनकी इस बात का क्या उत्तर देता है, तो आइए हम पढ़ें फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय उसके 4 पद में लिखा हुआ है, पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूं। यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूं। पौलुस कहता है, यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का हो तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूं। ध्यान दीजिए, 8वें दिन मेरा खतना हुआ। इसराइल के वंश और विन्यामिन के गोत्र का हूं, इब्रानियों का इब्रानी हूं। व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूं। वह किसी भी यहूदी से अपनी तुलना करके दिखा सकता था कि वह किसी भी प्रकार उससे कम नहीं है, मैं उनसे ऊपर ही हूं। अब वह उन 7 बातों का उल्लेख करेगा जिन पर उसे कभी भरोसा था। यह धर्म था। यदि कोई धर्म के द्वारा उद्धार पा सकता था तो वह तार्शिस का पौलुस ही था। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय उसके 5 और 6 पद में हम पढ़ते हैं, 8वें दिन मेरा खतना हुआ। इसराइल के वंश और विन्यामिन के गोत्र का हूं, इब्रानियों का इब्रानी हूं। व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूँ, उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। मेरे प्रियो, आज भी मनुष्य अनेक बातों का गौरव करता है परंतु किसी से उद्धार नहीं। पहली बात जो हम देखते हैं, आठवें दिन मेरा खतना हुआ। यह मूसा की व्यवस्था की मुख्य प्रथा थी। वह पालने से निकलकर आराधनालय में खतना करवाने तो नहीं गया था कि आठवें दिन उसका खतना किया जाए। उसके माता पिता ने उसे ले जाकर खतना करवाया था। वह स्पष्ट करता है कि उसके माता पिता ईश्वर भक्त थे। उन्होंने मूसा की व्यवस्था के अधीन उसका खतना करवाया था और मूसा की व्यवस्था की अनिवार्यताओं में ही उसका पालन पोषण किया था। आपको स्मरण होगा कि यीशु के माता पिता भी भक्त जन थे और उसे खतना करवाने मंदिर ले गए थे। मेरी सेवकाई में हानिकारक और बाधक बात थी कि मैं एक मसीही परिवार में बड़ा हुआ था। मेरे परिवार में सब मसीही तो थे परंतु विश्वास में कमजोर थे, और वह कड़वाहट और विरोध मेरे पिता के अंदर भी भरे हुए थे। परंतु उन्होंने मुझे संडे स्कूल भी नहीं भेजा और न ही किसी यूथ के सभाओं में भेजा, और आज भी मैं उस बात को स्मरण करता हूं तो मुझे दुख होता है। मेरे घर में मैंने न तो बाइबल देखी थी और न ही कभी प्रार्थना सुनी ठीक से। जब मैं परमेश्वर की निकटता में आया और सेमिनरी में पढ़ने के लिए गया, तब मुझे बाइबल की पुस्तकों का भी ज्ञान अधिक नहीं था। मैं देखता था कि वे विद्यार्थी जो मसीही परिवार से आए थे, वे बहुत कुछ जानते थे। मुझे सदा ही कमी का आभास होता था, परंतु पौलुस के साथ ऐसी कोई समस्या नहीं थी। आठवें दिन उसका खतना हुआ, अर्थात उसके माता पिता धर्मी जन थे। दूसरी बात हम देखते हैं, इसराइल के वंश। अनेक यहूदी शायद आधे यहूदी थे, परंतु मैं नहीं था। मेरे विचार में उस युग में पौलुस की भी वंशावली मंदिर में लिखी हुई थी। पौलुस की वंशावली थी, पृष्ठभूमि भी थी, और वह जानता था कि वह अनाथ नहीं था। और तीसरी बात हम देखेंगे, विन्यामिन के गोत्र। यह ऐसा है कि कोई कह रहा हो कि वह एक बहुत बड़े परिवार से है। विन्यामिन याकूब का अति प्रिय पुत्र था। राहेल उसे जन्म देते समय मर गई थी। राहेल ने उसका नाम कष्ट का पुत्र रखा था, परंतु याकूब ने उसे अपने सीधे हाथ का पुत्र कहा। राहेल उसके जीवन की ज्योति थी, और विन्यामिन को पालने में देखकर याकूब के सामने राहेल का चेहरा उभर आता था। वह उसे राहेल का पुत्र मानता था। वही उसकी बुढ़ापे की लकड़ी था। इसराइल का पहला राजा भी विन्यामिन के गोत्र से ही था, जिसका नाम शाऊल था। मेरे विचार में पौलुस, जिसका वास्तविक नाम शाऊल था, संभवतः राजा शाऊल के नाम पर ही उसने शाऊल नाम पाया था। अतः पौलुस बड़े घमंड से कहता था कि वह बिन्यामिन के गोत्र से है। मेरे प्रियो, यदि हम कहें कि मेरा पिता पादरी है या मेरा पिता परमेश्वर के वचन के लिए खड़ा होता था, तो उससे हमें लाभ होता है परंतु हानि भी होती है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं इस कलीसिया में ही बड़ा हुआ हूँ, मेरे पिताजी ने इस आराधनालय की नींव डाली है और एक खिड़की पर तो उसका नाम भी लिखा हुआ है, इस कारण मैं इस कलीसिया को नहीं छोड़ सकता। अब यदि वह कलीसिया मुक्ति विचारवादी हो जाए, जहां परमेश्वर के वचन की शिक्षा ना हो, तो ऐसा गर्व करना हानिकारक होता है। परंतु पौलुस के लिए विन्यामिन के गोत्र से होना घमंड वरन लाभ की बात थी। अब हम चौथी बात देखते हैं, इब्रानियों का इब्रानी, अर्थात वह एक अगुआ था और धर्म के क्षेत्र में उच्च स्तर पर था। वह शिरोमणि स्थान पर था। और पांचवी बात, व्यवस्था के विषय में कहो तो मैं फरीसी हूं। फरीसी समाज इसराइल का सबसे ऊंचा समाज माना जाता था। वे धर्म संबंधित राजनीति का दल थे। उनका लक्ष्य था कि वे अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित करें। यह संप्रदाय बेबीलोन की बंधुआई के बाद का था। वे रूढ़िवादी थे जो धर्मशास्त्र की अखंडता पर विश्वास करते थे। वे स्वर्गदूतों और पुनरुत्थान तथा चमत्कारों पर विश्वास करते थे। वे राष्ट्रवादी थे। मेरे विचार में निकोदिमुस को यीशु के पास भेजने के पीछे उनका उद्देश्य था कि गलील में से आने वाला यह नबी है, यदि वह हमें साथ ले ले तो हम जगह जगह जा सकते हैं और अपनी चतुराई से रोम को अपने पक्ष में कर सकते हैं। फरीसी सोचते थे कि वे राजनीति में चतुराई द्वारा अपना राज्य स्थापित कर लेंगे। वे इस पृथ्वी पर परमेश्वर का राज्य स्थापित करना चाहते थे। पौलुस कहता है कि वह एक फरीसी है। छठवीं बात, उत्साह के विषय में कहो तो कलीसिया का सताने वाला। पौलुस सोचता था कि कलीसिया का अंत करना परमेश्वर की इच्छा थी। मसीह के अनुयायियों को यरूशलेम से खदेड़कर फरीसी संतुष्ट हो गए थे, परंतु पौलुस संपूर्ण विश्व से उनका सफाया करना चाहता था। इसी उद्देश्य के निमित्त वह दमिश्क जा रहा था, परंतु प्रभु यीशु ने उसे पकड़ लिया और उसका मन परिवर्तन हो गया। इसके बारे हम बाद में देखेंगे। सातवीं बात हम देखेंगे, व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। यहां एक बात ध्यान दें कि वह अपने आप को निष्पाप या सिद्ध नहीं कहता है। वह कहता है कि वह निर्दोष था। रोमियो की पत्री 7 अध्याय उसके 7 पद में पौलुस हमें अपनी कहानी सुनाता है। बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। व्यवस्था यदि न कहती कि लालच मत कर तो मैं लालच को न जानता। जी हाँ, पौलुस पाप रहित सिद्धता का दावा नहीं कर रहा था। आज्ञा ने उस पर पाप प्रकट किया। अब यदि आप चोरी न करने की आज्ञा तोड़ते हैं तो आप वहां अपनी उंगलियों के चिन्ह छोड़ देते हैं। इसी प्रकार हत्या करना है, आपके हाथों पर अपराध की बात छप जाएगी। वे विचार भी छिपा नहीं रहता है। आप लालच कर सकते हैं और आपसे अधिक चतुर अन्य कोई न होगा। यदि पौलुस हमें यह न बताता तो हम सोचते कि वह निष्पाप था, सिद्ध था, परंतु वह स्पष्ट कहता है कि वह नहीं था। वह कहता है कि व्यवस्था उसके लिए दंड का कारण हुई। व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था, अर्थात वह पाप बलि चढ़ाकर परमेश्वर के संबंधों में उचित था। पौलुस निष्ठावान था। वह व्यवस्था का सम्मान पूर्वक पालन करता था। वह एक एक अति पवित्र जन के रूप में था, अतः उसे पूर्ण अधिकार था कि कहे यदि कोई देह के कामों पर गर्व करे तो वह मैं हूं। मेरे मित्रों, ये सब पौलुस की योग्यताएं थी। उसके धर्माचार इतने अधिक थे कि वह सोचता था कि वह परमेश्वर की दृष्टि में ग्रहण योग्य है। ये उसके लाभ की बातें थी। कई बार बहुत सारे लोग ऐसे धर्म और कर्म को करते हैं और सोचते हैं कि वे बहुत धर्मी लोग हैं, बहुत सिद्ध लोग हैं, और इस प्रकार से वे अपने आप को भूल जाते हैं कि वे एक पापी हैं और उन्हें भी उद्धार की आवश्यकता है। परंतु हम पौलुस में देखते हैं कि वह सारी बातों को उसके लाभ की बातें कहता है। उसका एक ही दुर्गुण था कि वह प्रभु यीशु से घृणा करता था। इसी घृणा के कारण वह यीशु के अनुयायियों का नाश करना चाहता था। एक दिन प्रभु यीशु ने उसे दमिश्क के मार्ग पर पकड़ा और उसने अपना लेखा वहीं बदला। उसका लाभ हानि बन गया और हानि लाभ। यह एक संपूर्ण क्रांति थी। मेरे प्रियो, यीशु से भेंट करने के बाद पौलुस ने सब लाभ की बातों को हानि समझा और जो हानि की बातें थी उन्हीं की ओर बढ़ चला। तो आइए हम पढ़ेंगे फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय 7 पद में लिखा है, परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। पौलुस अपने बही खाते के जमा खाते में अपनी पृष्ठभूमि, चरित्र और धर्म को रखे हुए था। मानव दृष्टिकोण से यह एक अत्यधिक प्रभावी सूची थी, परंतु एक दिन अचानक ही यह सूची उसके लिए हानि की सूची हो गई। अब वह उनमें विश्वास नहीं रखता था, क्योंकि वह प्रभु यीशु से भेंट कर चुका था। दमिश्क के मार्ग पर कदम रखते समय वह प्रभु यीशु से घृणा करता था और उसके अनुयायियों को नाश करना चाहता था, परंतु अब उसने अपना संपूर्ण भरोसा प्रभु यीशु पर स्थिर कर दिया था। ऐसा होना एक क्रांति है। सच तो यह है कि मन फिराव ही क्रांति है, क्योंकि लाभ की बातें हानि गिनी जाती है और हानि की बातें लाभ गिनी जाती है। आपका जीवन पूर्ण रूपेण पलट जाता है, बदल जाता है, यही मन फिराव है। पद 7 और 8 के मध्य समय का अंतराल है, जो मेरे विचार में यह पौलुस के मन फिराव से इस पत्र के लिखने के समय तक का अंतराल है। उसने प्रचार यात्राएं की और अब वह अंत में रोम नगर के बंदी गृह में है। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय उसके 8 पद में लिखा है, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। मेरे मित्रों, ध्यान दीजिए, पौलुस का मन फिराव एक पल का अनुभव नहीं था। यह हवा में तैरना नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं कि आप किसी वेदी पर जाकर कुछ असामान्य अनुभव करें, दर्शन देखें और ऊंचाइयों पर पहुंचे, बस यही सब कुछ है। ओह मेरे मित्रों, मन फिराव वह अनुभव है जो सदा आपके साथ रहता है। यह एक पल का अनुभव नहीं है, यह एक पल की घटना तो है, परंतु इसका अनुभव संपूर्ण जीवन का होता है। पवित्रता भी एक भावनात्मक अनुभव नहीं है, यह परमेश्वर के साथ प्रतिदिन का अनुभव है। पौलुस कहता है कि मन फिराव के उस पल से उसने मसीह के लिए जीना आरंभ कर दिया था। उसने सब बातों की हानि उठाई थी। प्रभु यीशु उसके विचारों में सबसे ऊपर था। जिन बातों को वह कभी अनमोल मानता था, उन्हें अब वह गोबर समझता है। ये कठोर भाषा है। वह कहता है कि वह अपने धार्मिक कृत्यों को नाली में बहाता है। वह जिन बातों में विश्वास करता था, उन सब को उसने नाली में बहा दिया है। अब वह केवल प्रभु यीशु पर उद्धार का विश्वास करता है। मुझे डॉक्टर केरल की बात स्मरण आती है। वो कहते हैं, मन फिराव के समय मैंने अपना धर्म खो दिया। अधिकांश विश्वासियों को अपना धर्म खोकर प्रभु यीशु को पाना है, जैसे पौलुस ने पाया। उसमें ऐसी क्रांति आई कि जो उसकी अनमोल उपलब्धियां थी, अब वे कूड़ेदान में पड़ी हैं। मेरे मित्रों, यह पौलुस का बहुत आंतरिक अनुभव था, जिसे वह महसूस करता था। आज हम में से कई लोग इस बात को स्वीकार करते हैं कि हमने मसीह को पाया है, हमने उद्धार पाया है, लेकिन हम उन पुरानी बातों को स्मरण करके उस पर घमंड करते हैं। होना तो हमें ये चाहिए कि मसीह को पाकर हमें घमंड करना चाहिए। आज पौलुस इस बात को स्वीकार करते हुए कहता है कि जिसे मैं लाभ की बातें समझता था, अब मैं जान गया हूं कि मेरे लिए हानि थी। क्या आज आप अपने जीवन में इस बात को देखने पाते हैं? क्या आपने इस बात को स्वीकार किया है? मेरे प्रियो, आज मुझे और आपको भी इस बात को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम उसको प्राथमिकता दें, न कि अपनी योग्यताओं को, न ही अपने पद को और न किसी और बात को। तो आइए आज हम पौलुस के सम्मुख अपने आप को भी रखें और कहें, प्रभु आप मेरी मदद करें ताकि मैं भी पौलुस के समान आप पर विश्वास कर सकूं, प्रभु यीशु पर उद्धार का विश्वास कर सकूं। मेरे प्रियो, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे आशा ही नहीं परंतु पूर्ण विश्वास है कि आज के इस वचन के द्वारा आप अपने जीवन में अवश्य ही आशीष प्राप्त किए हैं। और एक सही निर्णय आप अपने जीवन के लिए अवश्य ही लेंगे। प्रभु आप सबकी सहायता करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
तेरी कोशिशों के बदले क्या बता तुझे मिला है, तेरी कोशिशों के बदले क्या बता तुझे मिला है। जिंदगी खुशी से भर दे, कोई ऐसा सिलसिला है, तुझे कुछ न दे सकेगा, तेरे भाग्य का सितारा तुझे कुछ ना दे सकेगा, तेरे भाग्य का सितारा। सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा, तेरे पास घुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा, तेरे पास घुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। पीछा कर रही है, कोई है आवाज जो के तेरा पीछा कर रही है, है तेरा मसीहा जिससे तेरी रूह डर रही है, तेरा नाम लेके उसने आज फिर पुकारा, तेरा नाम लेके उसने तुझे आज फिर पुकारा। सिर्फ एक नजर उठ